ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते तु हलग्राम, नमस्ते मुसला आयुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्त वत्सलः, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठं प्रलंबारे, नमस्ते तु त्राहि माम कृष्ण पूर्वजं। कृष्ण नारायणं वंदे, कृष्ण वंदे ब्रज प्रियं, कृष्ण द्वैपायनं वंदे, कृष्ण वंदे प्रथासुतं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस् तद्धामं वृंदावनम्, रम्यद काचिद उपासना ब्रजवधुवर्गेन या कल्पिता। श्रीमद् भागवत पुराणम् अमलम् प्रेमापुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतम् इदम् तत्रादरो न परह अन्यः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का सुबह की भागवत कक्षा में हृदय से स्वागत है। बजाने वाले जरूर रहने चाहिए, क्योंकि हमारे सब अस्त्र शस्त्र है ना। कहीं हम लोग प्रोग्राम में जाएं और करताल मृदंग ये सब नहीं ले जाएं, कोई बजाए नहीं। अच्छा है, वैसे भी गा सकते हैं, लेकिन जब इतनी सारी सुविधाएं हैं तो क्यों नहीं बजाएं। सबके पास एक एक करताल होना चाहिए अपना, सब भक्तों के पास अपना खुद। तो इससे सीखने का भी अवसर मिलता है, और यहाँ तो हम सब लोग गाने के लिए ही आए हैं। ब्रज में जो हैं यहाँ गाया जाता है, हरि नाम गाया जाता है नित्य, और भगवान और उनके भक्तों का गुणगान किया जाता है। ग्रंथराज श्री श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंध 5 अध्याय 13 और श्लोक नंबर है 16 और अध्याय का नाम है राजा रघुगण तथा जड़ भरत के बीच और आगे वार्ता। श्लोक आ जाता है। प्रसज्जति क्वापि लता भुजाश्रयः प्रसज्जति क्वापि लता भुजाश्रयः स्तदाश्रय अव्यक्त पद द्विज स्पृह। क्वचिद कदाचिद हरि चक्रत स्त्रशन सख्यं विद्धते बककंग्रधे। शब्दार्थ है, दोहराएंगे, प्रसज्जति अधिका अधिक आसक्त होता है, क्वा अपि कभी कभी, लता भुज आश्रयः जो पत्नी की लताओं जैसी कोमल बाहों में आश्रय लेते हैं, तत आश्रय जो ऐसी लताओं द्वारा आश्रय प्रदान किए जाते हैं, अव्यक्त पद जो अष्ट पद गीत गाते हैं, द्विज स्पृह पक्षियों का गाना सुनने का इच्छुक, क्वचित कभी कभी, कदाचित कहीं, हरि चक्र तत्रशन सिंह की दहाड़ से भयभीत, सख्यम मित्रता, विद्यते करता है, बककंक गृध है बगुलों सारसों तथा गिधों के साथ। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज की। अनुवाद इस प्रकार से है, मेरे साथ साथ दोहराएंगे, कभी कभी जीवात्मा संसार रूपी जंगल में लताओं का आश्रय लेता है और उन लताओं में बैठे पक्षियों की चहचहाहट सुनना चाहता है, जंगल के सिंहों की दहाड़ से भयभीत होकर वह बगुलों सारसों तथा गृद्धों से मैत्री स्थापित करता है। तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, इस संसार रूपी जंगल में अनेक प्रकार के पशु पक्षी वृक्ष तथा लताएं होती हैं, कभी कभी जीवात्मा लताओं का आश्रय लेना चाहता है, तो इसको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां प्रसंग चल रहा है महाराज जड़ भरत राजा रघुगण को उपदेश दे रहे हैं, उनके बीच में वार्तालाप चल रहा है, क्योंकि महाराज रघुगण पद में हैं, राजा हैं, और पद में होने के नाते कभी कभी व्यक्ति गर्वित हो जाता है और भूल जाता है कि मैं किससे बात कर रहा हूं। और जड़ भरत जी तो पिछले जीवन में वो भी महाराज थे, यानी कि महाराज भरत, लेकिन भाव की स्टेज तक पहुंचने के बाद भी श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति आगे निष्ठा रुचि भाव, फिर निष्ठा रुचि के बाद आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। तो भाव की स्टेज में थे और भाव की स्टेज से भी पतन हुआ, यानी कि नीचे आ गए। किस स्टेज में आ गए? जो भक्ति की है वो तो रहेगी, भगवान का भी चिंतन कर रहे थे, लेकिन उसमें से अधिकांशतया समय वो हिरण के बच्चे का हो गया था। और एक दिन तो हिरण का बच्चा बहुत आगे निकल गया तो इनको चिंता लगती थी, उनको खिलाते थे, उसका मुख देखते थे, उसको ऐसे मलासते थे, ऐसे करते थे जैसे हम लोग अपने बच्चों को करते नहीं। तो और उनकी हिरण का उछलना और उनके पैरों के नीचे से निकलना, उनके ऐसे टच करना, स्पर्श, तो ये सारी जो है अटैचमेंट उनको अच्छे से हो गई थी। तो जब वापस नहीं आया तो उनका क्या हुआ? उनको जो बहुत चिंता जो है लगी। लेकिन मृत्यु जो है वो किसी का, किसी की चिंता का इंतजार नहीं करती है। जैसे सूर्य देवता किसी का इंतजार नहीं करते हैं कि कोई सोया है या रात को कितनी लेट सोया था, जागरण में था या उस शादी पार्टियों में था, क्या उसकी मजबूरी थी। सूर्य देवता जो है इंतजार, आयुर हरेसी पुनसाम, सूर्य जो है प्रतिदिन वो अमेरिका से लेकर नेपाल तक वो सबके लिए, क्या चाहे कोई सोया हो चाहे कुछ भी क्यों ना किया हो, वो निकलता है अपने समय पर। उसी प्रकार मृत्यु भी जो है, मृत्यु सर्व हरश्चा अहम, मौत को मत भूल, वह भी एक दिन आएगी। इस जिंदगी का क्या पता कब खफा हो जाएगी। तो मृत्यु जो है वो हम सबके साथ में है। तो भागवत क्लास में बैठे हुए व्यक्तियों का मृत्यु कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। आ भी जाए अगर मृत्यु तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि भगवान और उनके भक्तों का स्मरण हो रहा है ब्रज भूमि में भागवत सुनते हुए। तो यहां तक बता रखा है, अगर वैसे तो यमराज जी नहीं ले जाएंगे, अगर मृत्यु लिखी हुई है भागवत क्लास के बीच में, हमारी मान लिया मृत्यु लिखी हुई है किसी की भी, तो वैसे तो यमराज जी भक्तों के लिए नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आ गए मान लिया, और ब्रज में भी यमराज जी का चलती नहीं है, खदेड़ दिया जाता है, ब्रज में एंट्री ही नहीं है, मान लिया कदाचित कैसे भी आ गए, तो उनको जब तक भागवत क्लास आप सुनोगे नहीं पूरा, तब तक वो बाहर इंतजार करेंगे आपका, कृष्ण बलराम हॉल के बाहर, नहीं तो बलराम जी हल लेकर के फिर पीछे पड़ जाएंगे। तो भागवत की कक्षाओं में नियमित बैठने वालों के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है मृत्यु का। जो भगवान का चिंतन कर सकता है उसको चिंता का कोई विषय नहीं है, लेकिन जो संसार का चिंतन करता है उसके लिए चिंता का विषय है। तो मृत्यु उसी समय आई, उस वक्त जो जब वो चिंतन कर रहे थे हिरण का, ऐसा नहीं कि वो माला नहीं करते थे, ऐसा नहीं कि वो भगवान का स्मरण नहीं करते थे, कम हो गया था। जो दशा अभी हम लोगों की है, हम लोग भी गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, बाहर गए तो बाहर, दिल्ली गए तो दिल्ली वालों के दास, है नहीं? तो अभी हमारी भी वही स्थिति है। वो तो भाव के स्टेज में थे, वो रुचि भी, उनको रुचि, रुचि पूर्वक सब कुछ, आसक्ति और भाव, और फिर हिरण का चिंतन। उस वक्त में उनकी, उनका शरीर क्या हुआ? छूटा। उस वक्त मृत्यु आई और हुआ क्या? हिरण का चिंतन था इसलिए अगले जीवन में हिरण बने। लेकिन भगवान कहते हैं स्वल्पस्य अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि इस मार्ग में थोड़ा सा भी कोई अगर प्रगति करता है, थोड़ा सा भी, यहां तक बता रखा है, अगर कोई वृंदावन धाम के ऊपर कोई पक्षी अगर ऊपर से निकल जाए, तो बता रखा है उसने भी निसंदेह 10,000 वर्षों तक तपस्या की होगी, और अगर कोई गलती से पुरुषोत्तम मास में ब्रज भूमि में आ जाए तो उसकी तपस्या का तो कोई गुना ही नहीं है, अनंत अनंत गुना फल मिलता है इस पुरुषोत्तम मास में एक माला करने का, सारी पेंडिंग मालाएं पूरी हो जाएंगी। कितने यहां तो काफी सारे भक्त 64 माला भी करते हैं, कितने भक्त 64 माला करते हैं, हैं काफी, मैया भी करती हैं। अच्छा 108 कितने करते, मैंने सुना है कुछ भक्त 108 भी करते हैं, मैया करते हैं। हरि बोल, मैया के लिए एक दफे बोलिए हरि हरि गौर हरि। तो ये है वास्तव में, यही भजन है, यही भागवत श्रवण है सबको, जब निरंतर नाम गाने सदा रुचि, जब नाम गायन में सदा रुचि है रुचि पूर्वक। तो लेकिन बताया गया ऐसी स्थिति में तो उनको हिरण बनना पड़ा, और हिरण की स्थिति में भी उनको पूरा याद था कृष्ण भावनामृत। कभी कभी आप देखते होंगे मंदिरों के आगे कुत्ते लेटे रहते हैं, जो ही हरिनाम शोभा यात्रा निकलती है वो कुत्ते भी संग चलते हैं, सबसे पहले तो प्रणाम करते हैं लंबा चौड़ाओ। ऐसे कितने जानवर वो सब निकलते हैं, विशेषकर कुत्ते आपने बहुत देखे होंगे। तो मंदिर के आगे अगर बता रखा है कोई कुत्ता, अगर वो मंदिर के आगे सोए रहता है तो जरूर पिछले जन्म में वो कोई भक्त था, और विशेषकर पदासीन पद में आसीन है कि नहीं, वो तो आपको कुत्ते की घटना पता भी है कि नहीं। एक पंडित जी के पीछे कुत्ता पड़ा, कुत्ता पीछे पीछे जा रहा था, उनके कमंडलों में कुछ रखा हुआ था तो उन्होंने उसको एक पत्थर मार दिया, तो वो जो है वो प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंच गया कि मेरे को इन्होंने मारा कैसे। तो पंडित जी को बुलाया गया, उनको क्यों मारा, बोले मेरे पीछे पीछे बहुत समय से आ रहे थे और मुझे अपने भय के कारण फिर मेरे को पत्थर मारना पड़ा। तो लेकिन पत्थर तो बोले तुम कुछ कर तो नहीं रहे, बोले कर नहीं रहा था मैं पीछे पीछे जा रहा था बस। तो बोले कि तुम ही बताओ इस इनको पंडित जी को क्या दंड दिया जाए। बोले मैं पिछले जन्म में किसी मंदिर का प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था मंदिर का अध्यक्ष था, और मैंने देवधन का दुरुपयोग किया, आया था डोनेशन लेकिन मैंने अपना घर बनाया, अपने भोग विलासों के लिए उसको लगाया, तो मेरे को कुत्ता बनना पड़ा। अगर इनको भी कुछ सजा देना चाहते हो तो इन्हें भी क्या बना दो अध्यक्ष बना दो मतलब इन्हें भी कुत्ता बना दो। तो ऐसे करके तो ये आसक्ति जो है ये जो है ले डूबती है। और जड़ भरत जी को तो एक हिरण पे, केवल हिरण के बच्चे पर आसक्ति हुई, और हम लोगों का क्या हाल है, हम लोगों को तो मोबाइल में आसक्ति, व्हाट्सएप में आसक्ति, अभी माला बाद में होगी, लगे रहते हैं लोग व्हाट्सएप में मोबाइल में सवेरे 6 बजे उस वक्त। और वैसे बोलो तो बोले प्रभु जी 32 माला मेरी हो गई, मैंने कहा हो ही नहीं सकता है, तुम घंटे भर मोबाइल में, बोले मोबाइल देखते देखते माला कर रहे थे, मैंने कहा वाह तब तो कितनी बढ़िया माला हुई, मोबाइल देखते देखते माला हो रही थी। तो ये जो है ये स्थिति ठीक नहीं है। तो एक जन्म उनको हिरण बनना पड़ा। तो सोचिए हम लोगों के पास अगर 50 आसक्तियां सामने घूमी जहां जहां हमने लगाई, तो उतने जन्म लेने पड़ेंगे भजन करने के बावजूद भी, क्योंकि जिस वक्त शरीर छोड़ रहे थे उस वक्त आसक्ति ऐसी थी। तो अगले जीवन में उनको एक ही जीवन हिरण का शरीर मिला, जैसे मंदिर के आगे वो कुत्ता है वो भी एक ही जीवन में फिर से उनको मनुष्य शरीर मिलेगा, भक्ति का अवसर मिलेगा। ये भक्ति कितनी जो है चमत्कारी है, कितनी अग्नि के जैसी है। देखिए केवल एक ही जीवन, 84 में भटकना नहीं पड़ता है, केवल अगर भक्ति में गलती हो जाती है उसका दंड एक जीवन, और उसमें भी कृष्ण स्मरण रहते हैं। और क्या हुआ, जड़ भरत जी जो है वो अगले जीवन में क्या क्या बने, हिरण बने, लेकिन उसके अगले जीवन में क्या बने, हिरण का शरीर छूटा तो जड़ भरत, उनके और भी भाई थे लेकिन ये जो है मूक बिल्कुल ऐसे रहे, ना तो अच्छे कपड़े पहनते थे और ना ही जो है ये गायन करते थे, ना ही ये बोलते थे किसी से, बिल्कुल जड़ की तरह एकदम गूंगा, बोले पागल घर में आ गया, बस पागल पैदा हो गया। कोई पागल से प्रेम करता है? पहले बताओ, फटे पुराने कपड़े पहन लें, पागल से कोई प्रेम करता है? कोई पीछे नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रह करके वो जो हैं, उनके भाइयों ने तक यहां तक बता रखा है, बोले कि ये कुछ काम धंधा करता नहीं है, खाली मुस्टंडा होते जा रहा है बस, मतलब मोटा होते जा रहा है। तो क्या करें, उनको खेत में जो है लगा दिया, क्या वो पुतला बना दिया, ताकि जो पशु पक्षी वहां पर खा करके चले जाते हैं तो ये पुतला को देख करके वो होगा, वो भी बन गए। कोई उनने तर्क वितर्क नहीं किया, मेरा भी हिस्सा है, कैसे बना सकते हो, ये है वो है, हम लोग बड़ी बड़ी सारी बहसें करते हैं ना एक एक चीज में। तो उनने सोचा ये तो यहां चलते रहेगा, शाश्वत है, यहां बहस कुछ भी कर लो, जो यहां का जो स्वभाव है इस प्रकृति का वो होगा। तो भक्त उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता है अपना, वो आगे बढ़ता है। तो इन्होंने भी टाइम वेस्ट नहीं किया, वो बन गए। और वहां पर भी आपको पता चला भद्रकाली, भद्रकाली ने वहां कैसे रक्षा करी इनकी, इनको ले गए थे, वो सभी बलि चढ़ानी थी, और सभी बलि में हुआ क्या, इनको नहलाया धोलाया, बोला इतना बिल्कुल सुंदर, आज तो काली जी प्रसन्न हो जाएंगी। जो ही काटने वाले थे, काली जी अपने तलवार से सारे उनके गणों को उनको ही काटने लग गई, प्रकट हो गई बाहर। बोले ऐसा क्यों किया आपने? बोले तुमने भगवत भक्त के प्रति अपराध किया, ये तो बहुत बड़े वैष्णव हैं। तो किसी के सीधापन देख करके, जैसे महाराज रहुगण, जब उसके बाद एक दफे ये रास्ते में जा रहे थे, तो उनके जो कहार हैं वो पालकी को उठा के ले जा रहे थे, तो इनको भी लगा लिया, बोले तुम भी लगो चलो, और कहार लोग भार हो रहा है उनको। तो ये जो हैं भगवान के स्मरण में इतने ज्यादा लीन थे, ये कभी धीरे हो जा रहे थे, कभी तेज हो जा रहे थे, कभी रुक जा रहे थे। जैसे अभी काफी सारे लोगों को निद्रा आ जा रही है, अपने आप आ जा रही है, कहां से आ रही पता नहीं, हमारे अंदर से ही आ रही नहीं तो। लेकिन ये कृष्ण चिंतन में इनका क्या हो रहा था, ये जो हैं कभी रुक रहे थे, कभी चल रहे थे, कभी कभी धीरे चल रहे थे। तो इतना ज्यादा क्रोध आया महाराज रहुगण को, मैं महाराज होकर के तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं, मैं तुम्हें ऐसा तबीयत वाला दंड दूंगा, ऐसे ऐसे शब्द कहे इनसे कि मैं तुम्हें वो दंड दूंगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। बहुत जब इनकी उलाहना, बहुत अपशब्द, निम्न शब्द कहे, शरीर तो तुम्हारा बिल्कुल रुग्ण नहीं लग रहा है, ना ही तुम पतले लग रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम करके कर रहे हो, ठीक है कि नहीं, तो तुम्हें अब मैं दंड दूंगा। तो जब बहुत हो गया तो एक जगह तो इनने पालकी रोकी दी, रख दी नीचे, तब जो है वहां पर वार्तालाप राजा रहुगण को, उनको आत्मा के स्तर पर रियलाइजेशन करा रहे हैं, क्योंकि बिना साधु संग, साधु संग, साधु संग, साधु संग, सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, यहां पर ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी भक्त से, किसी इस्कॉन के वैष्णव से टकराया ना हो। है कोई ऐसा जिसको सीधे कृष्ण ने माला लाके दी हो दुकान से खरीद के, मैं कृष्ण हूं वृंदावन से आया हूं, अब मेरी इच्छा हो गई है तुम भजन करो, लो माला लो, है कोई? किसी ना किसी भक्त ने ही आपको तिलक लगाना सिखाया, किसी ना किसी भक्त ने ही आपको धोती कुर्ता लगाना सिखाया, किसी ना किसी भक्त ने ही आपको मंदिर बुलाया, उसने ही माला पकड़ाई, किसी ना किसी ने भक्त ने दीक्षा के स्तर तक लेके गए। हम भले ही भूल जाते हैं संसार में, बिना भक्त छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा। तो सबसे पहले इस संसार में हमें भक्त मिलते हैं, भगवान के जन, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। एक तो मनुष्य शरीर लेना दुर्लभ है, और ये भी क्या है, क्षण भंगुर है, और इससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है बोलो, ये सत्संग मिलना, भक्तों का संग मिलना, वैकुंठ के जो प्रिय हैं, वैकुंठ पति के जो प्रिय हैं उनका संग मिलना। तो इस्कॉन में तो वैकुंठ प्रिय दर्शनम यहाँ भरे पड़े हुए हैं। कितने देखिए, कितने वैष्णवगण जो नियमों का पालन कर रहे हैं और ठीक से गुरु बना करके दीक्षा लेकर के भजन कर रहे हैं, प्रामाणिक परंपरा में सिस्टम से दो दो दफे नहाते हैं, शरीर में तिलक लगाते हैं। अब भैया अब कौन सा ढूंढेंगे हम, बताओ नया नया। ये सारे सब बहुत ही पुण्यात्मा वैष्णवगण हैं, तो इनका संग मिलना ये हमारा क्या है, अहोभाग्य है। हम सबको संग मिल रहा है, इतने सारे भक्तों को देख करके हमारा भजन बढ़ता है आगे। अगर केवल हम ही हम हों तो भजन बढ़ पाएगा, अहंकार से भर जाएगा व्यक्ति कि मेरे अलावा कोई है ही नहीं। एक से बढ़कर एक भक्त, कोई 2 बजे उठ रहा है, कोई 1 बजे उठ के पता चला उसके 4:10 तक प्रभुपाद जी की आरती से पहले ही जो है 32 माला फिनिश हो गया है, 40 माला, ऐसा भी कोई 64 माला सवेरे फिनिश कर लेते हैं वो 1 बजे उठ करके, वो अपना 4 बजे तक उनका इतना फ्लोप है माला करने का। तो ये है एडवांसमेंट, सभी चीजों का, सारी चीजों का सार है, वो क्या है, नाम बिना किछु नाही आर 14 भुवन माझे। कि कितना हम माला कर पा रहे हैं, कितना नाम हमसे हो पा रहा है, यही एडवांसमेंट है। तो यहां पर जो है वो शिक्षा दे रहे हैं, बड़े सारे श्लोकों में उन्होंने बताया कि ये संसार जो है कैसे जंगल है। ये संसार जंगल है कि नहीं पहले बताइए, ये जंगल ही है। यहां बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े मॉल, ये जो नाना प्रकार की गाड़ियां, टीटा पीपा, ये जंगल में रहने वाले पशु पक्षी जैसे ही दहाड़ते हैं, ये हमारी शांति को भंग करते हैं। हमारे जो थोड़ी देर शांति से हम भगवान का चिंतन भी क्या करें, वहां से टी, वहां से पी, यहां से फिर मोबाइल प्रभु आ जाएंगे किसी के। तो ये जिसको हम अच्छा मान रहे हैं, इसको जो भगवत भक्त समझ जाता है संसार को, जैसे जड़ भरत जी ने समझ लिए संसार को, तो वो बोलते हैं उनको जंगल लग रहा है, ये केवल आसक्ति का पिटारा, यहां आसक्तियां ही आसक्तियां हैं। पत्नी की आसक्ति, पति की आसक्ति, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर कभी कभी जीवात्मा संसार रूपी जंगल में लताओं का आश्रय लेता है। तो यहां पर लताओं का जो लता उपमा दी गई है उसका उद्देश्य क्या है, लताओं के समान भुजाओं वाली अपनी स्त्री का ही आलिंगन करके सुखी रहना चाहता है। तो इस संसार का अगर कोई भजन ना करे तो सबसे बड़ा सुख क्या है, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, इसको सुख मानता है इंसान। लेकिन इसके पीछे छुपी हुई जो क्या है, छुपा हुआ क्या है, दुख है, वो भूले रहता है। प्रारंभ का सुख, इसको बोलते हैं राजसिक सुख। प्रारंभ में बड़ा अच्छा दिखेगा, सुनहला, आहा, कितना अच्छा कपड़े पहने हैं, ठीक है कि नहीं। आप देखिए जब भी एक कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी भजन करता है तो माताएं जो है आकर के सीधे दंडवत, आहा प्रभु जी आप इतना अच्छा गाते हैं, आपसे बढ़िया कौन गाएगा, आहा प्रभु जी आप ही क्यों नहीं गाते रहते हैं। भैया पूरी महीने थोड़ी गाते रहेंगे, सब और भी भक्त लोग हैं। तो आदमी को लगेगा आहा ऐसी प्रशंसा तो किसी ने आज तक की ही नहीं है, सच बात है ना, आपका प्रवचन आहा बस पूछो मत, सबसे बढ़िया लगता है। अब व्यक्ति फंस गया मान लिया, तो अभी तक दंडवत कर रहे थे, अब कभी दंडवत नहीं करेंगे जिंदगी में, मान लिया विवाह हो गया तो फिर जिंदगी भर दंडवत नहीं होगा, होगा। सुख सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुख की तमन्ना के लिए विवाह किया, अपने को झोंक दिया, लेकिन सुख मिलता है। पत्नी हो पति हो चिल्लाते रहते हैं लास्ट तक, क्या आपने किया ही क्या मेरे लिए, तब जो है माथा बड़ा ठनकता है उस वक्त में, एक ही आपने किया ही क्या मेरे लिए, बोले सब कुछ तो अपना सारा जवानी, अपना सारा खून पसीना, अपना सवेरे से 12-12 घंटे काम में जाना, फिर इतनी चिंताएं लेना, बोले एक ही चीज नहीं किया, फुल टाइम नहीं बना बस समय से वो बन जाता तो बहुत अच्छा होता। कोई खुश है किसी से पहले बताओ, कर्कश शब्द, थोड़ी देर, दो मिनट का सुख और जीवन भर का दुख, ठीक है कि नहीं? कोई पूछता नहीं है। शादी से पहले पूछते रहेंगे, आपने खाना खाया? ये कभी भी याद रखना। उसके बाद मरा है जिंदा है कोई मतलब, खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। सच बात है, हाँ या ना बोलो? तो सुख के लिए हम संसार में बंधते हैं, जंगल है केवल, फिर आगे पुत्र पुत्रादि वो कहना नहीं मानते हैं, ठीक है कि नहीं? कौन से पहले पता चला बच्चा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो प्रॉब्लम। फिर उसके लिए मन्नत है कि हो गया, 9 महीने इंतजार करता है, बेटा होगा बेटी होगी, फिर उसके बाद फिर आगे जो है वो क्या करता है, अब कौन से स्कूल में दाखिला करूं, उसकी ढूंढी हो जाती है, फिर कितनी फीस, ठीक है कि नहीं? उसके बाद वो बड़ा होता है कॉलेज, फिर उसकी शादी हो जाए, आंखें निकल जाती हैं लास्ट तक, तब तक बाहर आ जाती है, हरे गाल वाल सब अंदर, आंखों में गड्ढे पड़ जाते हैं बड़े बड़े, बुरी हालत। सुख की तमन्ना के लिए उसने ये सब किया था। सुख है? सुख तो भजन में है केवल। तो सात्विक सुख बोलते हैं, ये जो सवेरे 3 बजे उठना, 2 बजे उठना, इसको सतोगुणी सुख बोलते हैं। प्रारंभ में बड़ा कष्टदायक लगता है, लेकिन परिणाम उठ गए ऐसा लगता है, हा माला भी पूरी हो गई, सारे कार्य पूरे हो जाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें, माइंड सतोगुणी है, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, सब सारी पेंडिंग चीजें पूरी हो जाती हैं सवेरे उठने मात्र से। तो ये प्रभुपाद जी ने, क्योंकि बिना सतोगुण में आए भगवान को समझ ही नहीं सकता है कोई व्यक्ति, जब वहां पर बताया गया ना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, स्वच्छता ही, तो स्वच्छता का मतलब क्या है? ये मलमास है, तो मलमास का मतलब क्या है? जो हमारे ये एक महीना भगवान ने इस मलमास को अपना नाम दिया, पुरुषोत्तम मास दे करके, हमारे अपने जो हमारे शरीर के अंदर मल है, मल, उस मल को साफ करने के लिए पुरुषोत्तम मास बना दिया भगवान ने, इसीलिए नाम भी है अधिक मास। अधिक, अधिक का मतलब क्या है? हरि बोल, सोइए मत। अधिक का मतलब क्या है? समय से पहले अधिक उठना, अधिक माला करना, अधिक श्रवण करना, अधिक भक्ति करना, हर चीज अधिक अधिक अधिक, तो सारा मल साफ हो जाएगा। तो ये पुरुषोत्तम मास बता रखा है 12 महीनों में भी, ये जो 12 मास है ना, इन 12 महीनों में भी जो है ये इन सबसे भी बढ़कर के है। ये 12 महीना की जो भक्ति है वो पुरुषोत्तम मास की भक्ति का 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है, बता रखा है। भगवान ने अपना नाम दिया, खुद इसके पति बने और बोले मेरे समान वरदान देने वाली होगी, मेरे समान ख्याति, मेरे समान सब कुछ देने वाले तुम होंगी। इस महीने कोई व्यक्ति गंगा जी में स्नान करता है केवल एक दफे, तो बता रखा कोई 12,000 वर्षों तक गंगा जी में स्नान करे, 12,000 वर्षों तक, और वो इस महीने एक दफे गंगा जी में स्नान कर ले, तो बता रखा है वो फल उसको एक दिन में मिल जाएगा, एक दफे स्नान करने में। 12,000 × 365, एक साल में 365 होते हैं, कितना हुआ? 4,03,80,000 दफे स्नान करने का फल मिलेगा एक दफे स्नान करने में गंगा जी में। और अगर कोई गलती से यमुना जी की ओर आ गया तो बता दिखा है गंगा जी में जो स्नान करने के बाद फल मिलता है वो गंगा जी का केवल चिंतन करने, नहीं, यमुना जी का चिंतन करने मात्र से मिल जाता है। और अगर राधा कुंड श्याम कुंड की ओर चले गए, जहां पर गंगे यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती सभी तीर्थ सारे के सारे पवित्र नदियां, जहां पर यहां तक कि समुद्र भी जिसमें प्रवेश है, इसीलिए खारा है वो, समझ रहे नहीं? तो वो तक उसमें है, वहां अगर कोई स्नान कर लेगा, इसको 1,000 से गुणा कर लो, 4,03,80,000 गुणा कितना हुआ? 1,000, कितना हुआ कोई है गणितज्ञ? इतनी दफे स्नान करने का फल मिलेगा, आप सोचिए। तो ये वृंदावन में भजन करने से कितना बड़ा लाभ। 60,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करी ब्रह्मा जी ने, तब जाकर के ब्रह्मा पर्वत बने वहां पर, लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में कोई एक महीना पूरा कर ले तो वो साक्षात वो ब्रह्मा जी ही बन जाएगा, पर्वत बनने की भी जरूरत नहीं रहेगी। भगवान ऐसे ऐसे चांस देते हैं। तो इसीलिए वृंदावन में जो भी भजन कर रहे हैं केवल शुद्ध भक्ति मांगिएगा, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में रुचि मांगिएगा, उनके भक्तों से प्रेम मांगिएगा और ब्रजवास मांगिएगा। ठीक है कि नहीं? बस हो गया, यही चाहिए जन्म जन्मांतर तक केवल। तो यहां पर जो है इसलिए बताया है कि इस प्रकार से जीव जो है वो भटक जाता है भगवान को भूल करके, वो जो है स्त्री के आलिंगन करके सुखी रहना चाहता है। इन लताओं में चहकने वाले अनेक पक्षी रहते हैं। अभी लताएं मतलब लताओं की तुलना स्त्री की भुजाओं से दे रखी है, तो चहकने वाले पक्षी कौन होंगे बोलो? बच्चे, चूचा चूचा, जो चूचा बड़ी उनकी तोतली भोसी बोली जो है बड़ी अच्छी लगती, इधर से उधर भाग रहे हैं, उधर से इधर भाग रहे हैं, आ मेरे बेटा बेटा इधर आओ, आधा समय वो खा जाते हैं। ठीक है कि नहीं? खा ही रहे हैं, लगते बड़ा, क्योंकि संसार भगवान को भूल करके आए हो तो फिर माया ने तो अपना प्रपंच रचना ही है। महा माया ठगनी मई जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोलती बोलती मधुर वाणी। लगेगा ऐसा आहा, इससे ज्यादा सुख कहाँ। संसारिक व्यक्ति से बड़ी जल्दी दोस्ती लगती है कभी कभी भक्तों की, भक्तों से दोस्ती नहीं लगती, भक्तों को तो आंख का झाड़ ये ऐसे देखते रहते। मैंने देखा 64 माला कर रहे हैं लेकिन भक्तों को देख रहे, क्या बिगाड़ दिया भाई, ऐसा क्या बिगाड़ दिया। भक्तों से प्रेम नहीं है, बाहर वालों से बहुत प्रेम है जो भक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो झूठी तारीफ करते हैं इसलिए बड़े पसंद हैं। भक्त तो बोल देगा आप समय पर नहीं आ रहे हो, क्या है आ तो रहा हूं, आ तो रहा हूं। वो इसलिए पसंद नहीं है कोई बोल दे थोड़ा सा भी। मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी। आजकल आप देखेगा बच्चों को, मेरी लाइफ है, हु आर यू, आप कौन हो। मैं कहा बड़ी लाइफ आई तुम्हारी, कुछ भी करें हम, और कुछ भी कर क्या रहे हैं, बोले सुअर की तरह बाल बना रहे हैं ऐसे लंबे लंबे, बिल्कुल खड़े हो गए जैसे हो। अच्छी खासी जीन्स थी उसमें टल्ले लगा दिए फटे हुए, वो धब्बे डाल के उसमें, तो वो जिंदगी में धब्बे इतने पड़े हुए, वो धब्बे ही पसंद आते हैं वो। और करेंगे क्या, 12 बजे तक उठेंगे और रात को 2 बजे तक पढ़ेंगे, निशाचर भवती। बोलते रह जाते हैं 64 माला करने वाले भी, बेटा 9 बजे सो जा, 4 बजे उठा दूंगा, नहा के फिर पढ़ लेना, क्या है आपको क्या पता है, मेरे सारे दोस्त पढ़ते रहते हैं। तो ये जब ठोक बजा करके कोई कहना नहीं मानता है, बोले यही तो आशीर्वाद है, भगवान की तरफ से तो आशीर्वाद है ये, अगर मान लिया जाए तो यही आशीर्वाद है। जब तक यहां पिटाई और कुटाई नहीं होगी तब तक हमारा मन भक्ति में लगेगा कहां, लगेगा नहीं लगता है। थोड़ा सा भी संसार में किसी ने फेसबुक में लिख दिया आई एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, आहा सारा ध्यान वहां, आपका नंबर क्या है, बस हो गया। इंतजार करते रहते हैं उसमें, कोई लाइक करे, कोई ये करे, कोई लाइक नहीं करेगा सब। मेरे को अक्सर याद आता है कि सब ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को कि ये मेरे से प्रेम करेगा, वो मेरे से प्रेम करेगी, या एक करेगा, करेगा कौन, दोनों नंगे हैं, दोनों भिखारी हैं। वो सोच रहा है वो मेरे से प्रेम करे, वो सोच रहा है ये मेरे से प्रेम करे, करेगा कौन पहले पहले बताइए, दोनों ही भिखारी हैं। तो प्रेम तो है भगवान की भक्ति में, जब सेंटर में कृष्ण आएंगे, जब कानों से भगवत कथा अमृतम अंदर जाएगा, तब जाकर के जो है ये प्रेम आ सकता है। प्रेम यहां है, प्रेम हरि नाम में है। भगवान के खजाने में सबसे बड़ी वस्तु है भगवान का पवित्र नाम, हरि नाम संकीर्तन। तो इच्छा हमारी यही होनी चाहिए। क्या इच्छा होनी चाहिए? एक दफे एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया, बोले गुरुजी सुख किसे प्राप्त होता है? तो गुरुजी ने उत्तर दिया जिसका हृदय शांत है उसको सुख प्राप्त होता है। चंचल व्यक्ति को सुख कहां से होगा? बोले हृदय किसका शांत है? बोले जिसका मन चंचल नहीं है उसका हृदय शांत है। बोले मन किसका चंचल नहीं है? बोले जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं है। बोले अभिलाषा किसे नहीं है? बोले जिसको किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं है उसको अभिलाषा नहीं है। बोले आसक्ति किसे नहीं है? बोले तब बोलते हैं शांत मुद्रा में बोलते हैं जिसकी बुद्धि में मोह नहीं है उसी की आसक्ति नहीं है, उसी को आसक्ति नहीं है। तो जब तक ये संसार को भोगने का मन रहेगा तब तक जो है भूल जाइए न तो भक्ति होगी, केवल प्रपंच होगा बस। प्रपंच का मतलब इस संसार में जितने भी लोग, किसी ने कहा तुम्हारे कोर्ट केस, बोले तुम्हारा अहंकार, बोले ने मुझे इसने कष्ट दिया, बोले किसी ने नहीं, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारा क्या स्वाद, ये नाना प्रकार के व्यंजन खाना, तुम दोष देते हो कि इसने दिया। तो जितने प्रकार के प्रपंच हमारे संसार में हमको दुख तकलीफें मिल रही हैं, हमारा अपना ही वो हमारे कष्ट है केवल। तो आगे बोलते हैं चहचहाने वाले, यानी कि वह अपनी पत्नी की मधुर वाणी सुनकर संतुष्ट होना चाहता है, किंतु वृद्धावस्था में वो कभी कभी सन्निकट मृत्यु से भयभीत हो उठता है, जिसकी तुलना दहाड़ते सिंह से की गई है। सिंह के आक्रमण से बचने के लिए वह किन्हीं धूर्त स्वामियों, योगियों, अवतारकों और वंचकों की शरण में जाता है। तो संसार में बताया गया है कि हम ठगे जाना चाहते हैं तो ठग बैठे हुए हैं अनेक प्रकार से। आते हैं हम इस कौन में भक्ति करने के लिए, लेकिन फिर हमको दिख जाता है बोर्ड, रसिकाचार्य जी, रसिकाचार्य खुद ही लिख लेते हैं, कहां से रसिकाचार्य आए पता ही नहीं। तो बोर्डों की भरमार बनी पे बैठी हुई है, भगवान का चित्र कम होगा, अपने चित्र बड़े बड़े लगा रखे हैं, तो खुद ही रसिकाचार्य वो खुद में रस लेते रहते हैं। कथा कहने के बाद सीधे टेलीविजन महाराज में रस लेते हैं, मोबाइल में रस लेते हैं, पता नहीं किन किन चीजों में रस लेते रहते हैं। अब ऐसे ऐसे ये जो ठग लोगों की शरण में जाता है वो, और वो अपने आप को बड़े तरीके से सजा धजा करके भी आते हैं, खूब ऊपर से इधर उधर से पगड़ी लगा लोगों के मूछा तान के बिल्कुल, ठीक है कि नहीं, और दशम स्कंद के अलावा और कोई बात करते ही नहीं हो, क्योंकि उन्हें साधना भजन से, उनको सधने से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे प्रवंचकों से फिर हम ठगे जाते हैं। हम जो है ऐसे सरल, जो सहजिया लोग हैं, सहजिया मतलब जो भक्ति को बड़ा सहज ले लेते हैं, जो न तो नियमों का पालन करते हैं, ना सवेरे उठते हैं, ऐसे रसिक आचार्य जो है 11 बजे उठते हैं, ठीक है कि नहीं, और फिर वो गाना गाते हैं, मेरे बांके बिहारी के दर्शन खुले, हाय 9 बजे ओ 9 बजे, भगवान को भी अपने हिसाब से उठाने लग गया, बताओ। तो ऐसे लोगों को बड़ा, ऐसे ये जो झूठे, इनसे किसी को एक माला भी नहीं करते हैं हम लोग, तो इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, हाय 9 बजे ओ 9 बजे ये भजन गा करके। तो भजन तो गाना पड़ेगा, जीव जागो, बोलो गोरा चांद बोले, जिसका अर्थ नहीं बोले थे हम, ये गाए थे हम लोग। गौर सुंदर कह रहे हैं, अरे जीव जागो, सुप्त आत्माओं जागो, कितनी देर तक माया रूपी पिशाची की गोद में सोगे, तुम इस जगत में कहते हुए आए थे हे मेरे भगवान मैं आपका भजन अवश्य करूंगा, लेकिन जगत में आकर अविद्या माया में फंसकर तुम प्रतिज्ञा को भूल गए। जब पेट के अंदर हम होते हैं तो हाथ जोड़ते हुए बच्चा बाहर आता है, कुछ लोग उल्टे आते हैं, नहीं तो हाथ जोड़ते हुए, क्यों? क्योंकि अंदर वो दुखी अवस्था में प्रार्थना करता है कि भगवान मैं रसम कसम खाता हूं, बाहर आते ही आपका भजन करूंगा, लेकिन बाहर आते ही ये तुम्हारे फूफा जी, देखे 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 फूफा, ये तुम्हारे नाना जी, और बेचारा वो इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, वो नाना नानी उससे क्या मतलब, उसको कहां से जबरदस्ती नाना थोपा जाता है, फूफा थोपा जाता है, फूफी, ये तेरी बुआ की बुबनी, ये तुम्हारा ये है, पता नहीं क्या क्या, इतने सारे रिश्ते, कोई उसको कान पे हरे कृष्णा बोलने वाला नहीं है। तबीयत से भुला दिया जाता है, अच्छे से भुलाने की व्यवस्था की जाती है लेकिन जगाने की व्यवस्था नहीं की जाती है। और तुम्हें लेने के लिए मैं स्वयं ही इस जगत में अवतरित हुआ हूं, अब तुम स्वयं विचार करो कि मेरे अतिरिक्त तुम्हारा बंधु सच्चा मित्र कौन होगा। तुम्हारो लईते आमी हैनु अवतारो, आमी बिना बंधु तुम के आछे तुम्हारो। बोले तुम लोगों को ले जाने के लिए ही मैंने मीन के रूप में अवतार लिया। मैं अपने भगवान धाम में पांचों रसों के भक्तों से आनंदित हूं, उनको अपनी इच्छा ही नहीं, वो केवल मेरे को खुश कर, इतने जो दिन रात प्रभु के लिए सेवा में मशगूल हों। तो हम लोग तो भगवान को याद भी नहीं करते हैं, अपने हिसाब से ड्रेसें पहनाते हैं, अपने हिसाब से जगाते हैं, कभी दे दिया तो दे दिया, नहीं तो बोले बैठे रहो ऐसे ही। केवल तुम लोगों को ले जाने के लिए, तुम्हारा प्रेम कुछ नहीं है, तुम जाना भी नहीं चाहते हो, लेकिन मेरे से बड़ा मित्र तुम्हारा कोई नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कछुए का अवतार लिया, तुम्हारे लिए मैं सुअर बन गया, मैं बिड बराहा, बराहा का अवतार लिया मैंने केवल तुम लोगों को ले जाने के लिए बस, तो मेरे से बड़ा मित्र कौन होगा। तो भगवान से बढ़कर के मित्र जो सदा हमारे हृदय में बैठे रहते हैं, उनसे बड़ा मित्र कौन है। बोले मैं माया रूपी रोग का विनाश करने वाली औषधि हरिनाम मंत्र लेकर आया हूं, अतः तुम कृपया मुझसे महामंत्र मांग लो। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं ये महामंत्र मेरे से मांग लो, यही औषधि है, ये औषधि है भवरोग की औषधि। तो निरंतर नाम गाने सदा रुचि, तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाप्रभु के चरणों में गिरकर हरे कृष्ण महामंत्र बोलते, क्या बोलते हैं, मैंने हरे कृष्ण महामंत्र महाप्रभु के चरणों में गिर करके मांग लिया है। तो हमें भी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी से, गुरुदेव जी से, प्रभुपाद जी से और अपने वरिष्ठ वैष्णवों से उनकी सेवा करके और उनके निर्देशन में रह करके, आश्रय लेकर के, उनके गाइडेंस में रह करके भजन करते हुए हमें महामंत्र मांग लेना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ तो भक्त पीछे पीछे भागते रहते हैं, बोलते अभी टाइम नहीं है, थोड़ा बाद में वाला करूंगा, अभी बड़ी आपको क्या पता, आप तो जिम्मेदारी में पड़े नहीं ना। देखो जैसे कि वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा हो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है 64 माला करना, जो भी वृंदावन में आ गया उसको 64 माला पूरी कर लेनी चाहिए कम से कम, यहां 16 माला कम से कम नहीं चलेगा, ध्यान रख लेना। जो भी यहां आ गया वृंदावन में तो उसको 64 माला संपन्न करनी चाहिए, तो समझ लेना वृंदावन में रह रहे हो। नो प्रजल्पा, जब माला करोगे, जब 8 घंटे माला में लगेंगे तो प्रजल्प होएगा ही नहीं, बार बार यही याद, प्रसाद पाया फिर तुरंत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, पता चला वो नींद आ रही फिर भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सोते सोते तभी तो माला पूरी हो पाएंगे। रात हो गई पता चला फिर सवेरे उठे फिर 64 करनी है, तो ऐसे समय बिता दीजिए फिर जो है हमें हिरन नहीं बनना पड़ेगा, फिर ये दोबारा से ये कष्ट उठाने नहीं आना पड़ेगा। तो आगे बोलते हैं इस प्रकार माया के द्वारा पथ भ्रष्ट होकर वह अपना जीवन विनष्ट कर लेता है। कहा गया है हरि बिना न श्रुति तरंती, हरि भगवान की शरण लिए बिना तो कोई भी व्यक्ति मृत्यु के चुंगल से बच नहीं सकता है। यहां पर हरि शब्द से सिंह भगवान दोनों का बोध होता है, हरि अर्थात मृत्यु रूपी सिंह से बचने के लिए कृष्ण की शरण लेनी होगी, किंतु अल्प ज्ञानी लोग मृत्यु के चुंगल से बचने के लिए अभक्त वंचकों की शरण में जाते हैं, जो ऐसे झूठे चमत्कार दिखाते रहते हैं, तुम्हें ईश्वर बना दूंगा बोलते हैं, मैं बड़ा मिस्टिक पावर वाला हूं, है नहीं। दिखावे में, दिखावे का युग है कलयुग, तो दिखावे के ये जो कौन है, दिखावे के लोग योगी अवतार और वंचक, ऐसे लोगों के द्वारा हम ठग दिए जाते हैं इस जंगल में, तो एक जीवन और हमारा बेकार हो जाता है। तो यहां पर ये जड़ भरत जी की जो शिक्षा है उससे ये पता चलता है, राजा तुम कितनी दफे राजा बने, कितनी दफे तुम सेवक बने, तुम्हारे इतने जन्म मृत्यु हो चुके हैं जैसे समुद्र के किनारे बालू, कोई बालू को गिन पाएगा, कितने जन्मों में तुम स्त्री बने, पुरुष बने, कभी राजा बने, कभी कितने तुम्हारी बच्चे हुए, कभी तुम उनके पिता माता बने, कभी वो तुम्हारे माता पिता बने। तो इसको समझा करके उन्होंने क्या किया, पूर्ण रूप से उनको जो है भक्त बना दिया, वो भी एकदम विनम्रता पूर्वक पालकी से नीचे उतर करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, और प्रणाम करके बोले मैं क्या करूं, बोले उठाओ माला और हरि नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस यही है सार, और बाकी सब बोल लो जोर से बेकार। तो बहुत बहुत धन्यवाद, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं एक आध। जी प्रभु जी, थोड़ा जोर से। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। कल हम भी गए थे यमुना स्नान के लिए, लेकिन हृदय से बहुत दुख लगा। ये सरकार का काम है, सरकार का नहीं भी है तो हम सब भक्त मिलकर के करें। जहां जहां से नाले जा रहे हैं, सबसे पहले तो जो यमुना जी रोकी गई है, एक दफे उसको छोड़ दिया जाए ताकि पूरा फ्लो अप से सारा स्वच्छ हो जाए। और दूसरा, जहां जो 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 नाले गए वहां बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं ना पाइप, उन पाइपों को लगा के कहीं और जाके वो नाला जाए, तो यमुना जी अपने आप स्वच्छ भी हो जाएगी। अच्छे घाट बनाए जाए, उसको स्वच्छ किया जाए, ये भी है पुनर्जीवित करना। पूरा फली फल मिलेगा गंगा जी को स्वच्छ अगर आप करते हैं। वैसे तो यमुना जी गंगा जी स्वच्छ हैं अपने आप में, अगर उनको मैला कुचैला उसमें डाला गया तो वो हम लोगों ने डाला है। अगर हम वो नहीं डालते हैं तो बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी कम से कम, ये ठीक है कि नहीं, ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। तो यमुना जी अपना फल प्रकट कर देंगी, कृष्ण प्रेम देने वाली हो जाएंगी वो, ठीक है। और नहीं तो फिर समझ लीजिए जी। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूजा के बाद जो फूल यमुना जी में डाल देते हैं क्या करना चाहिए, उसको पता चला पेटियों में, उसके लिए बड़े बड़े गड्ढे खोद लेने चाहिए। दो चार गड्ढे खोदो अपने ही जो जमीन स्वच्छ है वहां पर, और उस सारे फूल मालाओं को सबको, चाहे कैलेंडर हो कुछ भी हो, उसको उसमें डाल देना चाहिए। वो खाद बन जाती है, वो अच्छा रहता है। यमुना जी में नहीं डालना चाहिए, यहां तक कि गंगा जी में जहां फ्लो अप है वहां पर भी फूल माला नहीं डालते हम लोग। अगर कुछ पुष्प चढ़ाने के लिए थोड़ा सा दो चार पुष्प वो डालते हैं, अलग बात है वो, नहीं तो वो भी किनारे लग जाता है, फिर कोई पैर रखता है उसमें। ये गायत्री वायत्री सब ये पीपल वृक्ष में ऐसे टांग देना चाहिए, नहीं तो जो बड़ा गड्ढा खोदा है भगवान के गले से उतरी हुई माला उसमें डाल देनी चाहिए, वो खाद बन जाता है, वो अपराध नहीं माना गया है, तो कलयुग में यही उत्तम रहेगा। और कोई प्रश्न? धन्यवाद। ग्रंथराज श्री श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम अधिक मास की, बोलो समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे श्याम। जो बोलेगा राधे श्याम उन्हें मिलेगा श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा।